गीता का पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो गया, दुख हो गया। क्यों दुख हुआ उसको?
बंधु बांधव
जब उसने अपने संबंधियों को देखा, गुरु को देखा, तब उसको दुख हुआ। और इतना दुख हुआ कि वो रो के उसके हाथ से गांडीव वगैरह सब छूट गया और बैठ गया, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान समझ गए इसका दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण शंकराचार्य जी कहते हैं केवल इतना ही है, मैं और मेरा, बस। मैं मतलब अहंकार, मेरा मतलब अनात्म वस्तुओं से तादात्म्य। अनात्म वस्तु जितने भी उनके संबंधी हैं सब अनात्मा है, सब अनात्मा है। घर, गाड़ी, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, ये जहां जहां आपने अनात्मा के साथ में मेरा लगा दिया वहां से आपको दुख आने वाला है। अच्छा, क्यों दुख आने वाला वहां से, ये तो अब आपको बताना होगा। अनात्मा बराबर आपको दुख देगा। क्यों देगा?
वो दुखालय है।
क्योंकि वो दुखालय है, वहां से दुखी मिल रहा है। मगर उसकी जगह मेरे कुत्ते के बदले मेरा भगवान, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल, मेरे राम, देखो एकदम बदल गया। वहां से दुख नहीं आएगा आपको। तो भगवान समझ गए कि इसके दुख का कारण है कि इसका तादात्म्य अनात्म वस्तु से हो गया। देखो, अनात्मा में सारा आ जाएगा, सारा विश्व अनात्मा में आ जाएगा, ये आप समझ के रखना। हम केवल एक टेक्निकल वर्ड ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि अनात्मा में सब आ गया। तो अर्जुन के दुख का कारण है अनात्म वस्तु से तादात्म्य। तो ये अर्जुन के दुख का कारण नहीं है, हमारे भी दुख का कारण अनात्म वस्तुओं से तादात्म्य दुख का कारण है, बस। अगर तादात्म्य हटा दें फिर हमको दुख नहीं होगा, तादात्म्य के कारण ही दुख है। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस परिस्थिति से हमको तादात्म्य है वहीं से दुख होगा। जहां से हमको, जहां पर हमारा तादात्म्य नहीं है, किसी व्यक्ति के पड़ोसी से अगर हमारा तादात्म्य नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें पता ही नहीं लगा कब वो हॉस्पिटल गया, कब मर गया, क्या हुआ, कोई पता नहीं, और दुख भी नहीं होता हमें। तो भगवान समझ गए कि इसका रोग ये है और उसकी दवाई केवल एक है। क्या है दवाई? किसका ज्ञान? अनात्मा से के दुख को अगर आपको हटाना है, एकमात्र औषधि, विकल्प नहीं है कोई, एकमात्र औषधि है कि आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। इसलिए भगवान ने सबसे पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मज्ञान दे दिया ताकि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। हालांकि उसने आत्मज्ञान मांगा नहीं था, उसने केवल इतना ही पूछा कि मेरा यहां पर इस युद्ध भूमि में कर्तव्य क्या है, मेरे को बताओ, मैं भूल गया हूं। अब तो एक 5 साल का बच्चा ही बता देगा तुम युद्ध भूमि में बू एंड एरो लेके आए हो, क्या करना है तुमको। मगर इतना मोहित हो गया था कि वो अपने कर्तव्य कर्म भी भूल गया था। भगवान ने आत्मज्ञान दे दिया, आत्मज्ञान के बाद दुख खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो भगवान समझ गए कि कोई इसमें बाधा है, आत्मज्ञान होने में, हमने आत्मज्ञान दे दिया मगर हो नहीं रहा, इट इज नॉट हैपनिंग। तो भगवान को समझ में आ गया कि कुछ बाधा है। क्या बाधा है? कि उसका मन अभी शुद्ध नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान होने के लिए सबसे पहले मन का शुद्ध होना जरूरी है, फर्स्ट स्टेप है। मन कैसे शुद्ध होगा? भगवान ने तुरंत जो है आत्मज्ञान देने के बाद में कर्मयोग की चर्चा शुरू कर दी। केवल कर्मयोग से ही आपका मन शुद्ध होगा, कर्म से नहीं होगा, कर्मयोग से शुद्ध होगा। और कर्मयोग से शुद्ध होने के बाद में ज्ञान प्राप्त हो जाने पर आप स्थित प्रज्ञ बन गए, ज्ञानी बन गए। उसके बाद भगवान ने ज्ञानी के लक्षण वहां बता दिए, दूसरा अध्याय खत्म। आप ऐसे ही पढ़ाया करो ना, 10 मिनट के अंदर 2 अध्याय खत्म, पहला अध्याय गया, दूसरा अध्याय गया, खत्म। अब तीसरे अध्याय में आके भगवान जो है कर्म योग के बारे में और डिटेल में बताते हैं। वहां पर उसने बताया था अर्जुन चूंकि विषाद में था, इस वास्ते उसको एक जो है डाउट हो गया। क्या डाउट हुआ उसको? कहता है भगवान आपने ज्ञान की भी बात की और आपने कर्म की बात की और हमको बार बार कहते हो खड़े हो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, इनको मारो। अगर कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मेरे को मारने को क्यों कहते हो? सीधा उसने प्रश्न कर दिया। और अगर 2 पाथ हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग 2 हैं, तो मेरे को ज्ञान मार्ग क्यों नहीं करने को देते हो? मेरे को क्यों बार बार कहते हो कर्मयोग करो, उसको मारो जाओ पहले। आपने ये इतना बता के मेरे को मोहित कर दिया है, मेरे को डाउट में डाल दिया है, मेरे को 2 में से 1 रास्ता बताओ। इसलिए अर्जुन कहता है कि तदेकम बद निश्चित, निश्चित करके भगवान एक बताओ, ज्ञान योग करें कि कर्मयोग करें। तो भगवान कहते हैं देखो ज्ञान योग कर्मयोग जो है वो 2 मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग के 2 नाम है। पहले आपको मन शुद्ध करना है, इसलिए आपको क्या नाम करना होगा? कर्मयोग। जब मन शुद्ध हो जाएगा उसके बाद में उसी रास्ते पर आपको आगे, आपका क्लासिक एग्जाम्पल है आपके डाउनटाउन में महात्मा गांधी रोड, उसके बाद में जिन्ना रोड, एक ही रास्ता है, पहले फिर जिन्ना रोड आएगा। तो बोले रास्ता एक ही है, मगर शुरू कहां से करना है? कर्मयोग से करना है। क्यों करना है कर्मयोग? मन शुद्धि फर्स्ट स्टेप, ये बराबर याद रखना। अच्छा, केवल याद रखने से नहीं होगा, आपने स्टेप आप लोगों को पता लग गया, मन शुद्ध करना है, फिर आपने ज्ञान है, आप जाके लेक्चर भी देके आ सकते हो है? मगर करना होगा, केवल जानने से ही करना नहीं हो जाता। मार्ग को जान लिया इसका मतलब हम गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, कोई भी मनुष्य जो है बिना कर्म के एक क्षण नहीं रह सकता। ये आपको समझ में आ गया, आगे हम लोगों ने बताया एक क्षण नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के द्वारा ही तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, इसका भगवान निरूपण करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं? नियतम कुरु कर्म तम, तुम अपना कर्म कर्तव्य कर्म बराबर करते रहो। क्या है हमारे कर्तव्य कर्म? कहां मिलेगा हमको? कैसे समझे हमारे कर्तव्य कर्म क्या है? तो आपके वर्ण आश्रम और आपके जो आपका स्टेटस है उसके हिसाब के आपके कर्म शास्त्र में बताए हुए हैं। ब्राह्मण के कर्म क्या है, क्षत्रिय के क्या है, वैश्य के क्या है, शूद्र के क्या है, ब्रह्मचारी के क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है, गृहस्थ में क्या करना है, वानप्रस्थ में क्या करना है, संन्यास में क्या है, सब लिखा हुआ है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। नहीं मालूम हो शास्त्र में पढ़ लो। फिर कहते हैं कैसे कर्म करना है? तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन। अगर आपने कर्म यज्ञ रूप से नहीं किया, देखो ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, हम सब कर्म करते हैं, यज्ञार्थ अन्यत्र, अगर यज्ञ रूप से कर्म नहीं किया तो वो कर्म आपको बांधेगा। कर्म बांधेगा मतलब उसकी वासना बनेगी। वासना बनने का मतलब क्या हुआ? आपने अपना ब्लूप्रिंट भगवान को दे दिया कि हमारा आगे हमको कैसा जन्म चाहिए। तो अगर और आप पुनर्जन्म चाहते हैं तो आपको गीता पढ़ने की कोई दरकार नहीं है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो। मगर अब अगला जन्म अगर नहीं चाहते हो तो कैसे कर्म करना है? यज्ञार्थ कर्मनो अन्यत्र। हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? अन्यत्र कर रहे हैं, यज्ञ रूपी कर्म नहीं कर रहे हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब विष्णु। विष्णु मतलब क्या है? ईश्वर। यज्ञ मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? कर्म किसके लिए करें? ईश्वर के लिए करने का मतलब क्या हुआ? ईश्वर की खुशी के लिए करना है। देखो ये समझते जाओ, ये साइंस है, पूरा साइंस है। ईश्वर की खुशी के लिए नहीं करेंगे। अगर सब लोग कहते हैं ईश्वर को समर्पित कर दो, अरे हम मर्डर करके आए, ईश्वर को समर्पित कर दो, किसी को लूट लिया, झूठ बोल दिया, ईश्वर को समर्पित कर दो, ऐसे नहीं होता है। ईश्वर कैसे खुश होंगे ये हमको देखना है। आप किसी को लूटोगे, किसी को मार लोगे, किसी को झूठ बोल दोगे तो क्या ईश्वर खुश होता है उसमें? नहीं, क्योंकि ईश्वर उसमें भी बैठा हुआ है ना। इसलिए यहां पर कहा यज्ञार्थ कर्मनो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन। भगवान कहते हैं स यज्ञ प्रजा शिष्टा पुरो वाचो प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा ने सबको, हर व्यक्ति को, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय को, सबके अंदर वो जो है सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है सह यज्ञ, मगर हम करते नहीं है। सॉफ्टवेयर सबके पास में है। भगवान कहते हैं देखो एक यहां पर सृष्टि में चक्र चल रहा है। क्या चक्र चल रहा है? कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्रह्मा ने ब्राह्मण है, ब्राह्मण से उसके बाद में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से वेद आया, वेद में कर्मकांड लिखा हुआ है, कर्मकांड करने से यज्ञ होता है, कर्मकांड से यज्ञ बना, यज्ञ से फिर बरसात होती है, बरसात से फिर अन्न होता है और अन्न से जीव होता है। ये बताया कि हमारा सृष्टि का ऐसा चक्र चल रहा है और सब के सब जो है दूसरे के लिए कर्म करते हैं, सब दूसरे के लिए कर्म करते हैं। एवं प्रवर्तन चक्रम नानुवर्ते इति है, या जो इस चक्र के हिसाब से काम नहीं करता है तो भगवान कहते हैं कि वो बेकार, उसका जीवन बेकार है। जो केवल अपने लिए करता है उसका जीवन बेकार है। मगर एक आदमी एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब उसको कर्तव्य कर्म नहीं करना है, उसको सृष्टि चक्र के हिसाब से भी कर्म नहीं करना है। कौन है वो आदमी? यस्तव आत्मा रति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको काम नहीं करना है, नो कर्तव्य कर्म। किसके लिए? जो आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मरति में लगा हुआ है, बराबर आत्मा में ही रमन करता है, यानी ज्ञानी आदमी के लिए। ज्ञानी आदमी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। ज्ञानी को छोड़ के दूसरे कौन है? अज्ञानी। अज्ञानी को कर्म करने हैं, कर्तव्य कर्म करने। कैसे करने हैं? यज्ञ रूपी कर्म करने हैं। फिर भगवान कहते हैं तस्मात असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर है, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है। अगर आप असक्त हो के विदाउट अटैचमेंट टू द कर्म और कर्म फल, विदाउट अटैचमेंट करोगे। देखो कर्म कर्म फल ये सब के सब अनात्म वस्तु हैं, सब अनात्मा में है। करना हमको पड़ेगा, क्यों? क्योंकि शरीर अनात्मा है। शरीर सत्व रजस तमस से बना हुआ है, दुनिया सारी सत्व रजस तमस से बनी है, वो तो ट्रांजेक्शन तो होगा ही होगा, मगर उससे अटैच मत हो। असक्त सततम कार्य कर्म समाचार है, अच्छी तरह से काम करो। असक्त तो ही आचरण कर्म है, परम अपने उत्तर पुरुष है, वो परम को पा जाएगा। जैसे भगवान कहते हैं कर्म करने के लिए, वैसे अगर कोई कर्म करे तो उसको परम मिल जाएगा। तो भगवान कोई एग्जाम्पल है कि पहली बार हमको बता रहे हो कि कर्म योग करो? भगवान कहते नहीं, एग्जाम्पल है। कर्मन ने भी संसिद्धि मा स्थिता जनकादय, बोले जनक आदि ये लोग कर्म कर करके सिद्धि पा गए, परम को प्राप्त हो गए, ये एग्जाम्पल है। फिर कहते हैं यद यद आचरित श्रेष्ठ तत् तत् देवो इतरो जना, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग काम करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम श्रेष्ठ है, तुमको नहीं पता है, तुमको देख के लोग सब फॉलो करेंगे। अब सचिन तेंदुलकर कहे ठंडा पियो, कोको कोला गाड़ी के पीछे में इंडिया में होता है ना, कौन कह रहा है? सचिन तेंदुलकर कह रहा है। तो अब जितने उसके अनुयायी है सब ठंडा पीना शुरू कर देते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहा है तो करो ऐसा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो। फिर भगवान कहते हैं तुम दूसरों क्या देखते हो, मेरे को देखो। न मैं पार्थस्थी कर्तव्यम त्रिशिलोकेषु किंचन, मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, मेरे को इस दुनिया से कुछ नहीं लेना है, मेरे पास ऐसी वस्तु नहीं है, कोई नहीं है जो मेरे पास नहीं है, सारी दुनिया का मालिक तो भगवान ही है। फिर भी कहते मैं कर्म करता हूं, देखो इसलिए तुम भी कर्म करो, मगर कैसे करो? न बुद्धि भेदम जाने ये अज्ञानाम कर्म संगीनाम, मगर तुम जो है अगर कर्म करोगे तो जो अज्ञानी लोग हैं जो कर्म करते हैं उनको अनसेटल मत कर दो। ऐसा नहीं कहो अरे तुम क्या कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो, कर्मयोग तुमको करना चाहिए। अब आप उसको कर्मयोग समझा नहीं पाते हो, अब वो कर्म करना भी छोड़ देगा, बोला गलत कर रहे हो तुम तो। तो यहां पर कहते हैं न बुद्धि भेदम, उनको डिस्टर्ब नहीं करो। जनेत अज्ञानम कर्म संगीनाम, जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, तुम अगर विद्वान हो, तुम अगर कर्मयोग जानते हो, तुम भी पूरी जोश के साथ में करो कर्म। तो इससे क्या होगा? तो अज्ञानी कहेगा कि मैं तो करते करते मर गया, रोता रहता हूं, जितना करता हूं उतना रोता हूं, मगर ये ज्ञानी कर्म करता है, हंसता है, आनंद में है। तो फिर अज्ञानी आके पूछेगा अरे भाई क्या बात है, मैं भी कर्म करता हूं, मैं रोता रहता हूं, अरे ज्ञानी कर्म करता है हंसता रहता है आनंद में है ये, तो आपको आनंद कहां से मिला मेरे को बताओ। तो फिर आपसे वो पूछेगा तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म व्यागयो गुना गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववित्त है, जो जानता है, उसे ये मालूम है कि गुना का गुण से वर्तन हो रहा है। गुण मतलब सत्व रजस तमस। ये शरीर किससे बना है? ये वर्तन किससे कर रहा है? मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, आपका शरीर किससे बना है? सत्व रजस तमस से बन रहा है। ये टेबल किससे बना है? वो भी सत्व रजस तमस से बना है। हम इस टेबल को व्यवहार कर रहे हैं तो कौन किससे व्यवहार कर रहा है? गुना गुणेशु वर्तन्ते, सत्व रजस तमस गुण और सत्व रजस तमस गुण के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। आप अम्मा चादर पर बैठे हो किससे बना है? वो भी सत्व रजस तमस है। सब चीज दुनिया सारी की सारी दुनिया सत्व रजस तमस गुण से बनी हुई है। तो जिसको ये पता लग गया गुना गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, वो उसके साथ में जुड़ता नहीं है, गुण गुण के साथ वर्तन कर रहे हैं, मैं तो गुण से अलग हूं, गुण तो माया के हैं, सत्तर रजस तमस तो माया के गुण है, मैं माया से भिन्न हूं, इसलिए वो उसके साथ में नहीं जुड़ता। अब भगवान तीसवें श्लोक में जाके बताते हैं कैसे आपको कर्म करना है। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मई सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मई, मेरे लिए सारे कर्म, 100% 99.9 नहीं होगा, 100% सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मेरे लिए करो। कैसे करो? शंकराचार्य जी ने बताया है कि आप अपने आप को भगवान का नौकर मानो। क्यों नौकर माने हम भगवान को, अपने अपना मालिक भगवान को क्यों मालिक माने? तो देखो, आप जब भी काम करते हो, जहां भी काम करते हो, जो आपको वेतन देता है, तो आप उसके दुख के लिए काम करते हो कि खुशी के लिए करते हो? भले ही आपको दुख हो, उसकी खुशी चाहते हो ना। तो भगवान कहते हैं इसीलिए तुम मेरी खुशी के लिए, देखो यहां खुशी वर्ड आया, आप जब काम करते हो तो अपने एम्प्लॉयर की खुशी के लिए करते हो। भगवान कहते हैं तुम मेरे को अपना एम्प्लॉयर समझो, तुम मेरे एम्प्लॉई हो, तो मेरी खुशी के लिए सब कर्म करो। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर, निराशी आशा मत करो, आशा किस चीज के लिए होगी? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या आने वाला है? कर्म फल आने वाला है, हम जो आज कर्म करेंगे उसका फल तो बाद में आएगा। कभी कर्म फल पहले आता है क्या? कभी नहीं आता है, कर्म करने के बाद में कर्म फल आएगा। तो जब आप काम करते हो उस टाइम में कर्म फल की चिंता नहीं करो, काम करते समय। इसका यह मतलब नहीं निकाल लेना कि हम कर्म फल कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म फल की चिंता प्लानिंग स्टेज में पहले करो, पहले प्लानिंग करो, उसके बाद एग्जीक्यूशन करो। मगर जब एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, फिर प्लानिंग की बात नहीं सोचो उस टाइम में। अब सोचोगे तो क्या होगा? बहुत साइंटिफिक है, तब 100% आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। सम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट एट दैट टाइम। तो फिर वो काम बताओ ठीक होगा? नहीं होगा, 100% ठीक नहीं होगा। इस वजह से कहते हैं निराशी निर्ममो, जो पास्ट में आपको फल मिला है, बैंक बैलेंस में आप रखा हुआ है, आप सोच रहे हो बस 3 मिलियन है, 2 मिलियन इसमें मिलेगा, 3+2=5, देन यू स्टार्ट कल्पना क्या क्या करेंगे 5 मिलियन से। देखो टाइम निकल गया आपका। निर्ममो भूत्वा, फिर युद्धस्य विगत ज्वर, विगत ज्वर मीन्स डोंट गेट एक्साइटेड, प्रेजेंट में एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो है मन आपका 100% दे के कर्म करो। फिर कहते हैं भगवान अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो क्या होगा? ये मे मतम इदम नित्यम उन्नतिष्ठन्ति मानवा, जो लोग मेरे इस मन को, इस मत को मानेंगे, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते मुच्यन्ते तेपि कर्म भी पाप और पुण्य से वो छुटकारा पा जाएंगे। कौन? जो भगवान की बात मानेंगे। भगवान ने क्या कहा? मेरी खुशी के लिए कर्म करो, कर्म योग करो। जो करेंगे कैसे करेंगे? श्रद्धा से, विथ फुल फेथ। उसके बाद में अनुसूयंत, विदाउट फाइंडिंग ए फॉल्ट, उसमें दोष नहीं निकालेंगे, विश्वास के साथ में बिना दोष निकाले, अगर भगवान ने जैसा कहा है हम करते जाएंगे बस। भगवान कहते हैं मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, तो आप मुक्त हो जाओगे। किससे? बोले कर्म से। कौन से कर्म से? बोले पाप और पुण्य से। आपके मन में आएगा भगवान पाप ले लो, पुण्य क्यों लेते हो, है ना? पाप ले जाओ, नरक में नहीं जाना है हमको, मगर पुण्य रहने दो। भगवान कहते हैं तुम्हारा पुण्य भी ले लेंगे। क्यों? अरे पुण्य लेके स्वर्ग जाओगे, फिर भी 10 दिन के बाद वापस आ जाओगे, तकलीफ क्यों कर रहे हो, हम पाप पुण्य दोनों ही ले लेते हैं, तुम्हारी स्लेट क्लीन। मुच्चन्ते तेपि कर्म भी। अब फिर कहते हैं कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, साथ साथ बताना होगा नहीं करोगे तो क्या होगा। ये तु तद अभ्युषयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमुणास्तान विद्धि नष्टान चेतस। भगवान कहते हैं जो हमारे इस ज्ञान के अंदर में, इस स्कीम के अंदर दोष निकालता है, अब भी स्वयं नानु तिष्ठन्ति मे मतम, और मेरे कहे के हिसाब से काम नहीं करता है। हम कर्मयोग करने को कहते हैं, वो कर्म करता है, कर्मयोग नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है, क्या होगा। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेत सर। तो बोलो उसका जो है सब नष्ट हो गया, बेवकूफ है। देखो ये काम आपका केवल ह्यूमन बर्थ में हो सकता है और दूसरे किसी बर्थ में नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि हमारी नेक्स्ट योनि यहां पर पेड़ होगी, हम ओक ट्री बन के खड़े रहेंगे यमुनोत्री में, खाली प्रवचन सुनते रहेंगे, नहीं होगा। या राम जी के मंदिर का कुत्ता बन के रहेंगे, नहीं होगा। रोज राम जी के दर्शन होते हैं, कुछ नहीं होगा। हमारे पवई आश्रम में दो कुत्ते हैं, उन्होंने पता नहीं कितने वेदांत कोर्स किए हैं। क्लास के बाहर दोनों बैठे रहते हैं,
कृष्ण कन्हैया
दो का नाम है। अब वो मतलब वो स्ट्रीट डॉग्स वाले कुत्ते हैं, वो कोई अच्छी जाति नस्ल के ऐसे वाले नहीं है।
हर क्लास वेदांत कोर्स में
उनको पता है कितने बजे क्लास होनी है, वो ठीक आके गेट के पास बैठ जाएंगे। सवेरे 5 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं, उनको पता है कि वहां चैंटिंग है, पहुंच जाते हैं, फिर ब्रह्मचारियों के साथ वापस आते हैं। मुक्ति उसमें न होगी नहीं। बोलते हैं उनका जो है जीवन नष्ट हो गया, तो वो लोग करते क्या हैं? बोले उनको कर्म करना पड़ता है। कैसे कर्म करते हैं? सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। बोले वो प्रकृति के हिसाब से, अपनी वासना के हिसाब से काम करते रहेंगे, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। निग्रह, क्या निग्रह करोगे उनके ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रकृति उनको चलाती है। अब भगवान कहते हैं देखो तुमको एक हम गूढ़ बात बताने जा रहे हैं। इंद्रस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वसम आगच्छेतो यस्य परिपंतिनो। इंद्रस्य इंद्रियार्थे, ये इंद्रियों के जो है, इंद्रियों के विषय के अंदर राग और द्वेष है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। विषय बाहर है, राग द्वेष भीतर है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स भीतर है और विषय बाहर है। भगवान कहते हैं तयोर न बसम आगच्छेत, उनके बस में कभी नहीं आना। क्यों? कि ये परिपंथिनो, ये आपके शत्रु हैं, राग और द्वेष आपके शत्रु हैं। राग और द्वेष के कारण आपके भीतर कामना आ जाएगी। अब इसको अगर ट्राई करना हो ना तो हॉथर्न मॉल जाया करो, हमको तो एक ही मॉल मालूम है। हर हफ्ते हम जो है सोमवार को हॉथर्न मॉल चले जाते हैं, तो वहां पर क्या है, एक दो बार हम गए हैं मेसी के अंदर, ऐसा नहीं कि हम नहीं गए, मगर हमको हमारा जैसा कुर्ता पजामा नहीं मिला, अब हम मेसी में जाते ही नहीं है। अब बाकी आप लोग जाओगे तो आप लोगों को बहुत चीजें अट्रैक्ट करेगी वहां। आप तो गए केवल विंडो शॉपिंग के लिए, वहां गए थे, कुछ लेना होना नहीं था, ऐसे घूमने के लिए गए थे। विषय बाहर है, राग द्वेष भीतर है, विषय देखा, अरे ये तो अच्छा है, ये तो नया कलर आया है, ये तो लेना है। अम्मा लोग बच जाती हैं, साड़ियां नहीं मिलती हैं। चलो तो वो जो है राग द्वेष भीतर बैठे हुए बोलते ये चोर हैं, ये परिपंथी नो है, ये आपको लूट लेंगे, तो इनसे सावधान रहना। फिर भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुना पर धर्मात्स अनुसिता, आपको अपने वासना के अनुसार आपके स्वधर्म के अनुसार आपको काम करना चाहिए, पर धर्म नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार देखा था कि स्वधर्म क्या है पर धर्म क्या है। प्राइम मिनिस्टर का पियोन जो है उसका काम है फाइल वाइल देना, चपरासी है वो तो, मगर पीएम के नजदीक रहने के कारण वो समझता है मेरा अधिकार पीएम के बराबर है क्योंकि उसके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा पीएम से मिलने के लिए। स्वधर्म निधर्म से या पर धर्म भयावह। अब अर्जुन एक प्रश्न करता है, अथ केन प्रयुक्त एम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्न पिवार्षिने बलादि बनियोजित। अर्जुन कहता है हमको लगता है भगवान मेरे भीतर कोई बैठा हुआ है कोई अंदर में है, मेरे को बताओ कौन है वो। अथ केन प्रयुक्त एम पापम चरित पुरुष, लोग पाप क्यों करते हैं। अनिच्छन्न, मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता हूं पाप करना, नहीं चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं लूट मार नहीं करना चाहता, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, मगर फिर भी अनिच्छन अपनी वार्षने बलादि मिल, पता नहीं कोई जोर से मेरे को करवा देता है। हमको मालूम है काम गलत है फिर भी मैं करता हूं, कौन है मेरे भीतर कोई बैठा हुआ है, मेरे को बताओ कौन है वो। भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये तुम्हारे भीतर में काम है, डिजायर है, राग द्वेष के कारण ये आते हैं। जैसे ही काम आया, काम और क्रोध दोनों भाई भाई हैं, काम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आया, डिजायर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, क्रोध आ जाएगा। तो काम एंड क्रोध कैसे आते हैं, बोले रजोगुण समुद्र, रजोगुण है इनके पीछे। आपका मन अगर रजोगुण हो गया तो आएगा ही, आपको चाहिए ही चाहिए और अब पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आएगा। देखो बच्चे जब खेलते रहते हैं ना खिलौने से, खूब तन्मय होकर खेल रहे हैं, उस टाइम आप उसका खिलौना छीन लीजिए, देखिए फिर वो कैसे क्या करता है, कितनी जोर चिल्लाता है, क्रोध आ गया। ठीक वैसा ही हम लोग के साथ में करता है। आप बच्चों को कहते हो पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ता है तो आपको आनंद होता है क्या, क्रोध आता है आपको। काम ऐसे क्रोध है रजोगुण समता, महासनो महापाप मा विद्य बैरिनम, बोले देखो बैरी है। फिर सेकंड टाइम भगवान कहते हैं बैरी, आगे शत्रु का अब बोलते हैं बैरी है। देखो अगर एक आदमी शत्रु आपके, आप जिसको जानते हो आपके पास में आया, आपको मालूम है कि 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद चला जाएगा, आप किसी तरह से सहन कर लेते हो, मगर शत्रु के साथ में 24 घंटा 365 दिन व्यतीत करना इज नॉट ए ईजी थिंग। हम सब व्यतीत कर रहे हैं, राग द्वेष क्या है हमारे भीतर में, शत्रु हैं, उनके साथ में हम घर कर रहे हैं, एक साथ बैठे हैं उनके साथ में। तो ज्ञानी के मन में जब काम आता है तो उसको समझ में आ जाए ये शत्रु मेरा आ रहा है, आई हैव टू बी अलर्ट। जैसे ही कामना ज्ञानी के मन में आती है तो वो क्या करता है, वो तुरंत सोचता है अरे अच्छा मेरा शत्रु आया है, मेरे को थोड़ा सतर्क रहना है, आ रहा है ये। और अज्ञानी, अज्ञानी कहता है कामना ये तो मित्र है, किसी ने कह दिया आपका बगल वाला मकान जो है बिक्री में है, ये तो अच्छी बात है, बगल वाला मकान ले लेते हैं फिर उसको भाड़ा में लगा देंगे ये करेंगे वो करेंगे, कल्पना करते 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 तो अज्ञानी सोचता है कि कामना मेरा मित्र है, ज्ञानी सोचता है कामना मेरी शत्रु है। अच्छा मगर भगवान ने कहा अज्ञानी मूर्ख है, ही सेइंग द रोजी पिक्चर ओनली, ख्याली पुलाव बनाता है खाली। आपको वो कहानी मालूम है ना कि वो मिल्क मेड एक थी, वो रोज अपना दूध बेचने के लिए जाती थी, हैं, हाड़ी सिर के ऊपर में रख के नदी पार करके दूसरी तरफ जाना, बेच के फिर आना। तो एक दिन वो क्या किया, वो सोचने लगी कि तो अभी तो आज थोड़ा जल्दी घर से निकल गई हूँ, थोड़ा सा पेड़ के नीचे विश्राम कर लूँ। उसने रखा और सो गई। सोने के बाद में वो सपना देखने लगी, डे ड्रीमिंग, आज इतना दूध बिक्री हो जाएगा, इतने पैसे मिलेंगे, कल इतना होगा, इतने पैसे मिलेंगे। करते करते उसने कल्पना में देख लिया कि एक दिन बहुत बिक गया, बहुत पैसे हो गए, अब हम एक किसी नौकर को रखेंगे, वो नौकर जाके बिक्री करके आएगा, अगर नहीं बात सुनेगा तो उसको हम लात से एक लात मारेंगे। जैसे ही लात मारी, दूध की हाड़ी गई, सारी कल्पना के अंदर में सब खत्म हो गया। तो भगवान कहते हैं यही संस्पर्धा भोगा दुख योनोते आद्य अंतवंत कौनते न तेसु रमते बुध। भगवान कहते हैं कि जितने भी हमको भोग जो संस्पर्श से मिलते हैं, संस्पर्श से मिलते हैं ज्ञान इंद्रियां जो है, जब विषयों के साथ में जब आती हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां पांच विषयों के साथ में जब आती हैं, इनसे जो भी हमको सुख मिलता है, बोलते हैं ये सब दुख देने वाले हैं, ये दुख की योनि है। और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आद्यवंत, उनका अंत है, उनका आदि है, शुरू होता है खत्म हो जाता है। कौनते न तेसु रमते बुध, जो ज्ञानी लोग हैं वो इस विषयों में नहीं जाते, वो विषयों के अंदर में नहीं जाते हैं। अच्छा, बोले काम आता कैसे है, बोले बहुत सुंदर रूप लेके आता है, जैसे पूतना सूर्पनखा, ये राक्षसी थी पर कैसा सुंदर रूप लेके आए। स्वामी जी बता रहे थे कि वो जो पूतना ही लगता है लक्ष्मी आ गई है, इतना सुंदर रूप था। तो जब आती हैं कामना तो बहुत सुंदर रूप में आती हैं, मगर ये हमारे नित्य वैरी हैं। अच्छा, ये कामना कितने किस्म की हैं, क्या हैं, तो यहां उन्हें बताया, धूम्रावृत बन्नी यथा आदर्शो मलेन च यथो उल्वे नावृत्तो गर्भस्थ तथा तदेनावृतम। तीन एग्जाम्पल एक दे दिए भगवान ने यहां पर। तो सात्विक राजसिक और तामसिक ये हम लोग देख चुके हैं, तो हमारा माइंड भी सात्विक राजसिक माइंड होता है, तामसिक माइंड होता है, वस्तु भी सात्विक राजसिक तामसिक होती है, क्योंकि सब चीज उनसे बनी हुई है सात्विक राजसिक तामसिक से। वृत्ति भी सात्विक राजसिक तामसिक, वृत्ति भी सात्विक राजसिक तामसिक होती है। तो ये सब की सब जो है ये अशुद्ध चीजें हैं। सत्व रजस तमस तो माया के गुण है ना, माया तो सब अशुद्ध है, हमको तो शुद्ध होना है। अब कहां कामना रहती है, अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया कि अगर हमारा शत्रु अगर कामना है तो मेरे को ठिकाना बताओ, हम जाके उसको मार के आए? नहीं, शत्रु का पता होना चाहिए ना कहां रहता है ये। तो भगवान कहते हैं ये हमारा ये कर दिया था उन्होंने, इंद्रियानि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतो विमोचयेत ज्ञानम आवृत देनम। इंद्रियानि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते, इनका घर कहाँ है, इनका ठिकाना कहाँ है, बोले इंद्रिय मन और बुद्धि। ये कामना कहाँ रहती है, ये राग द्वेष कहाँ रहते हैं, इनका ठिकाना है इंद्रिय मन और बुद्धि, ये इनके तीन ठिकाने हैं जहां पर ये रहते हैं। ये क्या करते हैं, एते विमोहित, ये हमको डिल्यूट करते हैं, विमोहित करते हैं। ज्ञानम आवृत्त देहनम, और ज्ञान को हमारी विवेक शक्ति को हमारी बुद्धि को ढक देते हैं। देखो कई बार आप लोगों के साथ में ऐसा घटा होगा कि आप बाजार गए, आपने चीज देखी, आपके मन में आया, आपने सामान खरीद लिया, घर आके जब आप सोचते हो कि कहीं बेकार ही खरीद लिया, क्या होता है कि नहीं कभी
वापस करना।
ज्ञानम आवृत, मगर उस टाइम में ज्ञान आपका इंटेलेक्ट ढक गया उस टाइम में जब खरीद ले रहे थे, सब काट के अंदर डालते जाओ डालते जाओ। शांतानंद जी बोलते हैं, जब मैं पहली बार अमेरिका आया मेरे को कुछ नहीं लेना था, एक भक्त ने कहा आप चलिए स्वामी जी चलते हैं दुकान में मॉल लेने के, तब उन्होंने सोचा थोड़ा सा दाल चावल कुछ ले लेंगे, और क्या आपको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनके पहनने लायक कोई कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। बोले मैं गया तो जाके मैंने काट फूल खरीद दिया, जो भी देखता गया लेता गया। तो ये हमारी सबकी ऐसी चीज है, हम लोग जाते हैं अच्छा अरे ये नया चीज है, ये मेरे पास नहीं है, ये वैरायटी है, इसको भी देखें, इसको भी लें, इसको। इंद्रियो मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, और ये क्या करती हैं, ये विमोहित कर देती हैं हमको, डेल्यूट कर देती हैं, और करने के बाद में ज्ञान को भी ढक दिया, हमारे इंटेलेक्ट को ढक दिया, विवेक बुद्धि को हमारा उस टाइम में उन्होंने ढक दिया। बहुत अच्छा, फिर देखो सबसे पहले ये जो है राग द्वेष जो है ना आपके ज्ञान को ढक देते हैं, विवेक शक्ति को, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उस टाइम ढक दिया, मगर वो विवेक शक्ति घर जाके खुल जाती है, खुल जाती है तब होते बेकार है, इसको वापस करेंगे कल जाके परसों जाके। देखो ये कैसे काम करते हैं, जैसे किसी आर्मी को अगर आपको डिफीट करना है तो उनकी राशन लाइन को काट कर देना चाहिए, कहाँ से उनको राशन मिलता है, राशन सप्लाई खत्म कर दो तो आर्मी वीक हो जाएगी, ठीक उसी तरह से ये काम क्या करते हैं, आपकी विवेक शक्ति उस टाइम रख दिया, विवेक शक्ति इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। बहुत अच्छा, देखो काम जो है वो कैसे आता है, पहले पहले विषय देखा, ज्ञानेंद्रियां उसको पकड़ती है, ज्ञानेंद्रियों के बाद वो मन को पास जाता है, मन के बाद पे बुद्धि के पास जाना चाहिए, मगर बुद्धि को ढक दिया, और ये काम इतना पावरफुल होता है कि वो बुद्धि को भी अपने साथ में ले आता है, बुद्धि भी तर्क देती है, अरे तो बढ़िया है ले लो इसको, अभी पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, बुद्धि को भी जो है वो ड्रैग कर लेता उस टाइम के अंदर, इतना पावरफुल ये काम होता है। अच्छा कैसे काम को हटाएं ये तो बताना होगा, काम को हटाएं कैसे, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं होगा ना, तो भगवान बताते हैं कैसे काम को हटाएं।
तस्मात्त्वमिन्द्रियान्यादौ नियम्य भरतर्षभ
पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्
तस्मात्त्वमिन्द्रियान्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्।
तस्मात् तम इंद्रियानी आदो, आदो में पहले सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप कहते हैं भगवान क्या कि तस्मात्, तस्मात् मतलब एक कंक्लूजन आ गया, एक निगमन कहते हैं कंक्लूजन, क्या करना होगा, बोले सबसे पहले अपनी इंद्रियों को आप नियमन करो, कंट्रोल करो। देखो माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, इंद्रियों को कंट्रोल करना सहज है, इंद्रियां क्या है, एंट्री पॉइंट है, तो कहीं भी अगर आपको कुछ करना है, नाकाबंदी करनी है, तो एंट्री पॉइंट बंद कर देते हैं। अब जैसे किसी को पता लग गया कि एक आदमी जो है वहां से लेके कुछ लेके इधर आना चाहता है, स्टेट में घुसना चाहता है, तो वो पोस्ट होते हैं चेक पोस्ट पर, वो चेक पोस्ट बंद कर देते हैं, हर गाड़ी को हर व्यक्ति को लोग देखेंगे क्या है, तो इसलिए एंट्री पॉइंट जो है सहज है, उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, दम। सम किसको कहते हैं, कंट्रोल ऑफ माइंड, तो दम जो है इज द कंट्रोल ऑफ सेंसेस, तो कंट्रोल ऑफ सेंसेस इज इजियर देन कंट्रोलिंग माइंड, इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले आप इंद्रियों को करो कंट्रोल करो, उसका नियमन करो। समर्थ रामदास जी कहते हैं, अगर कोई गुरु अगर आपको कहे कि आपको सेंस कंट्रोल नहीं करना है, तो बोले ऐसे गुरु के पास में कभी नहीं जाना, भले ही एक पैसे में अगर तीन गुरु भी मिल जाए। उन जमाने में पैसे होते थे, एक रुपए में 16 आना और एक आने में 4 पैसे, एक रुपए में 64 पैसे होते थे। तो उस टाइम के गुरु कहते थे कि अगर एक पैसे में तीन गुरु भी मिल जाए, या अगर कोई गुरु बोले फ्री सर्विस दे रहा है, बोले तब भी नहीं लो। अगर आपको कोई गुरु कहे कि आपके सेंसर्स को कंट्रोल नहीं करना है, तो बोले ऐसे गुरु के पास में नहीं जाओ। हमारी गीता में भगवान ने कहा, यदा संगर्ते चायम कुर्मोंगा नीब सर्वस इंद्रियानी इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमारे एग्जाम्पल भगवान ने दिया, जैसे टॉर्टोइस कछुआ जैसे ही डेंजर देखता है, वो अपने सारे अंग को एक साथ चिकोड़ लेता है और ऊपर में सील्ड, जब तक बाहर में शत्रु है, जब तक संकट है, तब तक वो सेफ। तो ज्ञानी को क्या करता है, ज्ञानी भी ऐसे ही करता है। ज्ञानी जब देखता है काम आया है, ये तो शत्रु है, अपने को कंट्रोल कर लेता है। तो कंट्रोल करना ही करना है। तानी सर्वानी संयम में युक्त आसीत मत पर है बसे ही यस्य इंद्रियानी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर भगवान ने कहा कि अपनी इंद्रियों का संयम करो, कंट्रोल करो। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध है ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है और सर्वत्र समबुद्धि इक्विपॉइज, ऐसा नहीं है कि जब सुख आया तो हम उछलने लगे, दुख आया तो हम जो है डिप्रेस्ड हो गए। ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, वो हमको मिल जाते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे पास पहुंच जाते हैं। सर्वभूत हिते रता, वो सब भूतों के हित के लिए काम करते हैं। अच्छा, इंद्रियों के कंट्रोल से कामना जाएगी। अगर हम एंट्री पॉइंट को ही बंद कर दें, अगर हम हॉथन मॉल जाना बंद कर दें, सोचो आप कामना बंद होगी कि नहीं। प्रोविजन स्टोर में भी अगर हम कम जाएं, आपको जितना चाहिए जाओ, अपना गार्डन फ्रेश से सब्जी लेके आ जाओ, आप डिफरेंट आइल्स के अंदर क्यों घूमते हो? जितना चाहिए उतना लेके आ जाओ। हम फिर देखने लगते हैं और क्या है आज, क्या है। तो हम ये आदेश है, भगवान कहते हैं कि तुम जो है इसको करो। पापमानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञानम नाशनम प्रजही प्रजही, भगवान कहते हैं या तो ड्रॉप कर दो ये कामना को, ड्रॉप कर दो। प्रजही मीन्स ड्रॉप करना। तो जैसे ही अगर ये कामना आए तो उसको ड्रॉप करो। अच्छा, ये कामना का मतलब ऐसा नहीं लेना कि अगर आपको भूख लगी, अरे कामना आ गई तो इसको भूख को खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं। दैट इज नीड है। आपको प्यास लगी है, पानी पियो, ये कामना नहीं है। कामना हम उसको कहते हैं जो कि हमारे नीड से अलग, हमको ये सोचते हैं उसके अंदर शोभन बुद्धि दे दी, ये मिलने से हमको सुख मिलेगा, उसको कामना कहेंगे। एक मकान है हमारे पास में, दूसरा मकान मेरे को सुख देगा, तीसरा मकान सुख देगा, 1 मिलियन सुख देगा, करते करते अब रह जाते हैं 10 मिलियन 20 मिलियन बैंक में पड़ा रहेगा। एनम प्रकृति वैरिनम, ये आपके जो हैं शत्रु हैं। अच्छा, दूसरा इंटरप्रिटेशन प्रजही एनम का मतलब होता है हन धातु से प्रजही आया, हन मतलब किल, इस कामना को किल कर दो, जैसे ही आए उस टाइम में किल कर दो। तो कामना को हटाने का एक तरीका भागवत ने बताया कि जैसे ही पहले कामना का प्री स्टेज है संकल्प, जैसे ही संकल्प आए ना उसी टाइम में उसको खत्म करो, डोंट ब्रूड ओवर दैट संकल्प। अगर आपने ब्रूडिंग कर दिया तो गड़बड़ होगा। अगर आप सोचने लगो कि भागवत सप्ताह के अंदर एक दिन जो है डाउनटाउन से, कहां से हम लोग का खाना आता है प्रेमल जी, डाउनटाउन में उरुस्वाति से आया था, उसमें एक दिन जो है उन्होंने क्या दिया था, दही था, मीठा दही, क्या बोलते हैं उसको, श्रीखंड था, दैट वॉज वेरी गुड। आप चिंतन करना शुरू करो, कल सवेरे आप वहां श्रीखंड के लिए आप वहां रहोगे, क्योंकि संकल्प आया, नाउ आर रूडिंग ओवर दैट, तो आ जाएगा।
एग्जाम्पल बराबर नहीं दिया आपने।
अच्छा, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान क्या है? तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि अभिप्राय है कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, आपने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र मतलब गीता पढ़ी, आपको आचार्य ने समझाया, उनका उपदेश दिया, आत्मा अनात्मा विद्या और अविद्या आदि पदार्थों का बोध होता है, उसका नाम ज्ञान है। अब आप लोगों को आत्मा अनात्मा का तो ज्ञान हो गया, अनात्मा क्या है आत्मा क्या है इसका ज्ञान हो गया, इसको ज्ञान कहते हैं। और उसके बाद में विज्ञान किसको कहते हैं? तो कहते हैं एवं उसका जो विशेष रूप से अनुभव, उसका नाम विज्ञान है। जब हम लोग गीता पढ़ते हैं तो हमको आत्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान हो गया, एक आत्मा है एक अनात्मा है, मगर उस परोक्ष ज्ञान का जब अपने को अनुभव हो जाए, सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाए, तब उसको विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान। अभी तक जो हम लोग का ज्ञान है वो किताबी ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है। आत्मा मेरे पास में है, क्या आपने अनुभव कर लिया? अगर अनुभव कर लिया तो आपको विज्ञान हो गया। तो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये कामना जो है वो आपके ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश कर देती है। इसलिए सबसे पहले जो है आप वहां पर कंट्रोल करो, पहले कामना को कंट्रोल करो एंट्री पॉइंट पर, और दूसरा प्रजही काम, जैसे ही संकल्प आए। तो इसमें दो चीजें आपको इस श्लोक में बताई गई, एंट्री पॉइंट पर चेक, और दूसरा जैसे ही संकल्प भीतर में आया उसको थॉट को बदली करो, दूसरे थॉट को ले आओ। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं कैसे सेंसेस को कंट्रोल करें, तो भगवान बताते हैं
इंद्रियाणि परान याहुः,
इंद्रियाणि परान याहुः,
इंद्रियेभ्य परं मनः,
इंद्रियेभ्य
परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः,
मनसस्तु परा बुद्धिः,
यो बुद्धे परतस्तु सः,
यो बुद्धे परतस्तु सः,
इन्द्रियाणि पराणि याहुः, इन्द्रियेभ्य परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु सः।
इंद्रियानि परानि आहु, आहु शंकराचार्य जी कहते हैं पंडिताः, पंडिताः मीन्स जो आत्मज्ञानी है उनको हम लोग पंडित कहते हैं। ये पूजा करने वाले पंडित नहीं, जिनको आत्मज्ञान है उसको यहां पर पंडित कहा गया है। तो ये पंडित लोग क्या कहते हैं? इंद्रियानि परानि, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों से इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म है। इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ही विषय हैं, और ज्ञानेंद्रियां कितनी है? वो भी पांच है। तो बोलते हैं कि इंद्रियों के विषयों से इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म है, वो अंदर है, वो व्यापक है। शंकराचार्य जी ने तीन वर्ड यहां यूज किए हैं, सूक्ष्म अंतरस्थ व्यापित्वादि। विषयों से इंद्रियां सूक्ष्म हैं। विषय किसके बने हुए हैं? पंच महाभूत के हैं, वो ग्रॉस हैं। इंद्रियां किससे बनी है? सूक्ष्म पंच महाभूत से बनी है। सूक्ष्म पंच महाभूत क्या दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं। स्थूल पंच महाभूत दिखाई पड़ते हैं। विषय किससे बने हैं? स्थूल पंच महाभूत से। इंद्रियां किससे बनी है? इसलिए वो कहते हैं वो ये सूक्ष्म कैसे हैं? एक तो सूक्ष्म है, दूसरे अंतस्थ है, भीतर है। ये इंद्रियां भीतर है। जब हम इंद्रियां कहते हैं तो हम आई का मतलब ये इस आई बॉल को नहीं समझते, इसके पीछे एक और इंद्रिय है उसको हम कहते हैं। वो इंद्रियां जब आप मरते हो तो चली जाती है, आई बॉल रहता है, डेड बॉडी के अंदर में. आईबॉल ग्रॉस है, ग्रॉस पंच महाभूत का बना हुआ है. उसके पीछे एक इंद्रिया है, वो इंद्रिया सूक्ष्म महाभूत की बनी हुई है. तो कहते हैं वो इंद्रियां जो हैं विषयों से सूक्ष्म हैं. इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से सूक्ष्म कौन है? मन है. संकल्प विकल्प आत्मा का मन. मन से सूक्ष्म क्या है? मनसस्तु परा बुद्धि, निश्चय आत्मिका बुद्धि, वो मन से श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है. तो कौन किससे सूक्ष्म है? सबसे पहले ग्रॉस विषय, विषय से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि. यह बुद्धे परस्तु सह, यह बुद्धे परतस्तु सह. बुद्धि से परे कौन है? सह, सह मीन्स आत्मा. वो आत्मा उससे भी पीछे है, सूक्ष्म है. अच्छा, कठोपनिषद में भी यही की चीज कही है, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष है पर पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति. महत परम अव्यक्तम, आपने महत तत्व का नाम सुना है? महत तत्व सबसे पहला जो है मैनिफेस्टेशन है. कहां से आता है? अव्यक्त से, अनमैनिफेस्ट से. फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज कॉल्ड महत तत्व. तो यहां कहा महत परम अव्यक्तम, महत से परम श्रेष्ठ सूक्ष्म अव्यक्त है. अव्यक्त से परे क्या है? पुरुष ब्रह्मन. फिर कहते हैं पुरुषात् न परम किंचित, बोले उस ब्रह्मन के उससे सूक्ष्म कुछ है?
नहीं,
कुछ नहीं है. सा काष्ठा सा परागति, वो लिमिट है. काष्ठा मीन्स लिमिट. उस ब्रह्मन के पीछे आप मत पूछो ब्रह्मन का मां बाप कौन है. वो काष्ठा परागति, वहां तक पहुंचना है हमको, ब्रह्मन तक पहुंचना है, परागति बस. तो क्यों ऐसा ग्रेडेशन किया? अगर हमको नियमन करना है इंद्रियों का, तो हमको उसके ऊपर की चीजों को जानना है, ऊपर की चीजों को जानना है. जैसे भगवान ऑलरेडी कह चुके, विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिन रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते. अगर आज किस एरिया को क्या कहते हैं, वर्णन नील एरिया की लिबर्टी मिले, वर्णन, अगर वर्णन नील के सारे व्यक्ति अगर ठीक कर लें कि हम आज से हम लोग शराब नहीं पिएंगे, अगर ये निश्चय कर लें. अब बताओ कि आपके प्रोविजन स्टोर मैरियानो के अंदर वो सेक्शन रहेगा फिर, जिसके अंदर शराब बेचते हैं, जहां पर सब किस्म की वैरायटी है? अगर सब व्यक्ति ये डिसाइड कर ले हम नहीं पिएंगे, विषया विनिवर्तन्ते, सब चले जाएंगे, विषय वापस चलेंगे, यहां डिमांड नहीं है. जब डिमांड होगी तभी तो हम लेंगे, अगर डिमांड ही ना हो विषय चले जाएंगे. मगर आपके भीतर एक जो है रस रह जाता है, जो पीते हैं उनके भीतर में एक रस, एक इच्छा रह जाती है. वो इच्छा कैसे जाएगी? तो कहते हैं कि वो आपकी इच्छा, जब आप उस तत्व को जान लोगे तब वो इच्छा चली जाती है. जब उस तत्व को, जब उस पुरुष को, जब उस परमात्मा को आप जान लेते हो, तो वो रस, वो जो है इच्छा जो है वो भी निकल जाती है. तो हमको करना क्या है? हमको अपनी दृष्टि लोअर से उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर करके हमको आत्मा तक पहुंचना है. जब हम आत्मा तक पहुंचेंगे ये कामना सारी खत्म हो जाएगी. अच्छा देखो, व्यवहारिक सुख के अंदर भी हम क्या देखते हैं, विषयों के सुख से लेके मानसिक सुख जो है ज्यादा मोर पावरफुल है. इज इट नॉट सो? विषयों का सुख और मानसिक सुख, विषयों का सुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो आपको सुख मिला, मानसिक सुख एक पोएट या एक साइंटिस्ट का जो रिसर्च करके जो सुख मिलता है, उसका सुख जो है विषयों के सुख से ज्यादा सूक्ष्म है. मानसिक सुख से बौद्धिक सुख और सूक्ष्म है. किसी ने अगर आइडियोलॉजी को पकड़ लिया, किसी ने अगर हमने ये ठीक कर लिया कि हमको अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, आइडियोलॉजी हाई गोल, उसके लिए वो मानसिक दुख और शारीरिक दुख सहन करने के लिए तैयार है, हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जितनी मानसिक यातनाएं और शारीरिक यातनाएं दी वो कैसे झेल सके, क्योंकि उनको बौद्धिक सुख मिल रहा था, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं इसलिए वो इतनी सहन कर सके। मगर इस बौद्धिक सुख के भी परे एक सुख है, वो है आत्मसुख। वो जब आपको सुख मिल जाएगा तो आपका ये बौद्धिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, तीनों आप छोड़ने को तैयार हो। तो कैसे करें इसको, तो कठोपनिषद में तरीका बताया, यच्छेद वाक मनसी प्राज्ञ, कि वाक को, वाक मतलब स्पीच को, स्पीच को मन के अंदर मर्ज करो। तत् यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, उसके बाद में ये मन को बुद्धि के अंदर में करो, फिर बुद्धि को बोले व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि के अंदर करो, समष्टि बुद्धि को फिर आत्मा में करो। देखो वहां प्रोसीजर बता दिया, विषयों को मन, विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि एक इंडिविजुअल बुद्धि, फिर इस इंडिविजुअल बुद्धि को समष्टि बुद्धि में मर्ज करो, समष्टि बुद्धि को फिर आत्मा में कर दो। इस तरीके से आपको करना है। देखो भगवान जो है ना अर्जुन का मन लिफ्ट कर रहे हैं, आपका भी मन लिफ्ट होना चाहिए, विषयों से आस्ते आस्ते इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा के ऊपर में हम जा रहे हैं। अब लास्ट सुनो,
एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा,
एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा,
संस्तभ्यात्मानमात्मना,
संस्तभ्यात्मानमात्मना,
जहि शत्रुं महाबाहो,
जहि शत्रुं महाबाहो,
कामरूपं दुरासदं,
कामरूपं दुरासदं, एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा
संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदं।
एवं बुद्धे परम बुद्धा, इस प्रकार अपनी बुद्धि से अति श्रेष्ठ आत्मा को पहले जान लो। हमको वहां तक जाना है, आत्मा तक जाना है। आत्मा कहां पर है? विषयों से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म, वहां तक हमको जाना है। इसको जान लो, कैसे करो? संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, संस्तभ्य कंट्रोल, रिस्ट्रेन योर सेल्फ, अपने को संयम में लाओ, अपने आप करो, अपने आप को संयम करो। फिर जही शत्रु महाबाहो, जही शत्रु महाबाहो, काम रूप जो शत्रु आपका है उसको जो है आप मारो। काम रूप दुरासदम, बहुत मुश्किल काम है वैसे, कामना को मारना बहुत मुश्किल है, मगर अगर आप वहां पहुंच गए तो हो जाएगा। देखो इस श्लोक के अंदर दो चीजें हैं भगवान ने कहा। देखो एक तो है आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? अज्ञान चला जाएगा। अज्ञान चले जाने का मतलब क्या है? आवरण चला गया। आवरण चला गया मीन्स तमोगुण चला गया। क्या नहीं समझाता है? आपको ज्ञान चाहिए, आपने ज्ञान आत्मा का प्राप्त कर लिया। अभी हम क्या हैं? अभी अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी है? तमोगुण ने उसको ढका हुआ है। तमोगुण का काम है आवरण शक्ति, रजोगुण का काम है विक्षेप शक्ति, और उसके सत्वगुण का काम क्या है? विवेक शक्ति। सत्वगुण के कारण आपको विवेक शक्ति मिलती है। तो एक आपको हमको काम करने को भगवान ने कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? अज्ञान चला जाएगा। अज्ञान चले जाने का मतलब क्या है? जो आपका जो आवरण है भीतर में, आत्मा ढका हुआ है, वो आवरण चला गया। आवरण किसने किया?
तमस ने।
देखो हो गया। दूसरा काम भगवान ने कहा कि संस्तभ्य आत्मना आत्मानम, अपने आप को रिस्ट्रेन करो, संयम करो, कंट्रोल करो अपने सेंसेस को। कंट्रोल करो सेंसेस का मतलब क्या हुआ? अब आपका मन शांत हो गया, विक्षेप नहीं हो रहा ज्यादा। अगर सारे इंद्रियां खुली रहे, मन खुला रहेगा, तो मन जो है कंटिन्यूसली एजिटेटेड रहेगा। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो मन क्या होगा, विक्षेप कमती होगा। विक्षेप कमती होगा मतलब रजोगुण कमती होगा, रजोगुण कमती हुआ मतलब तमोगुण गया, रजोगुण गया। डिड यू गेट इट? आप लोग के लिए थोड़ा डीप हो जाता है, अगर आप लोग वेदांत पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो तमोगुण को हमने टैकल कर लिया, रजोगुण को टैकल कर लिया, और इस तरह से हम कामना पर विजय करेंगे। तो कामना पर विजय करने के लिए कंट्रोल योर सेंसेस श्लोक 41, रियलाइज सेल्फ श्लोक 42 एंड 43। इस तरह भगवान कहते हैं हम कामना का जय कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने देखा काम रजोगुण से उत्पन्न होता है। भगवान ने आगे एक जगह कहा ना, काम एसु क्रोध एसु रजोगुण समुद्भव। तो काम कहां से शुरू हुआ, रजोगुण से। रजोगुण को कैसे हमने टैकल किया, संयम से, सेंस कंट्रोल से हम लोगों ने काम किया। अच्छा, काम ज्ञान को ढकता है और उसके तीन एग्जाम्पल भगवान ने दिए थे। एक जैसे आग को धुआं ढकती है, ये सात्विक है, थोड़ा सा फूंक मारो आग जलने लग जाएगी। दूसरा दर्पण के ऊपर, मिरर के ऊपर डस्ट है, फूंक मारने से नहीं जाएगा, आपको डस्टर लेकर थोड़ा सा करना होगा, ये रजोगुण है। पहला सत्वगुण है, रजोगुण। तीसरा जैसे फीटस गर्भ के अंदर में बच्चा है, आप जितना चाहो बच्चा 9 महीने के पहले बाहर नहीं आएगा, इट विल टेक इट्स टाइम, ये तमोगुण का एग्जाम्पल है। तीन एग्जाम्पल भगवान ने दिए थे। तो वैसे करके वहां ढका रहता है। और काम कैसा है, महासना, जितना पूर्ण करोगे उतनी कामना बढ़ती जाएगी, महासना, कभी उसकी भूख खत्म नहीं होती है। और इसका भाई या पुत्र क्रोध है, काम का भाई या पुत्र क्रोध है। इसका निवास स्थान क्या है, इंद्रिय मन और बुद्धि, याद रखना होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। पहले इंद्रियों का नियमन करो, फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल आदव संयम, इंद्रियों को नियमन करो, उसके बाद में फिर उसको हायर चलते जाओ। इंद्रियों से ऊपर कौन है, अगर हम आत्मा तक पहुंच जाए, नीचे के सारे सब टैकल हो जाएंगे। तो काम को शत्रु जानो, इस शत्रु को कैसे हटाना है, अब आप लोगों ने इसका साइंस जो है विज्ञान सीख लिया है। तो आपका छू मंत्र से किसी के छूने से कामना नहीं जाएगी, ये याद रखना। महात्मा जी जरा मेरे सिर पर हाथ रख दो, कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने कह दिया आत्मना आत्मानंद, खुद करना होगा, आपको कंट्रोल करना है, आपको ऊपर बढ़ना है। पुष्पिका वाक्य,
ओम तत्सदिति,
ओम तत्सदिति
श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः।
ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।